इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि सारा और इमरान मिलते हैं और आर्यन और सानवी के बीच अनबन हो जाती है। इस अध्याय में विक्रांत कपूरिया अपने ऑफिस में एक महत्वपूर्ण टेंडर की तैयारी कर रहे हैं जो आर्यन राजवंश से प्रतिस्पर्धा का कारण बनता है। आर्यन इंद्र के घर से लौटने पर सानवी को लेकर द्वेष और भ्रम का अनुभव करते हैं, लेकिन उसके प्रति आकर्षित भी होते हैं। मानवी वेद और अवनि के साथ एक पल साझा करती है और परिवार से चुड़ाव महसूस करती है। मानवी बालकनी में खड़ी हुई अपनी ही सोच में थी। अवनी अंदर से बाहर उसके पास आई। अंदर आ जाओ मामा, बाहर ठंड है। ठीक है, चलो, मानवी ने कहा। मानवी ने मुस्कुराकर अवनी को गले से लगा लिया और गोद में उठा लिया। दोनों कमरे में आ गए। वेद लैपटॉप पर कर रहा था, वो अपने काम में लग रहा। इसे सुला दो, मामा ने कहा, ये पूरा दिन खेली है, वेद ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। ठीक है, मानवी धीरे से बोले। उसने अवनी को बिस्तर पर लिटा दिया। सो जाओ बेटा, मानवी ने कहा। अवनी ने आते ही बड़बड़ाते हुए कहा, लाइट भी ऑफ होनी चाहिए, रोशनी में मुझे नींद नहीं आएगी। बेटा, डैड काम कर रहे हैं, मानवी ने धीरे से कहा। उसी पल वेद ने मानवी की तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर वापस मुड़ गया। ऑफ कर दो, लाइट की जरूरत नहीं है, उसने सख्त स्वर में कहा। उसकी आवाज में नर्म कठोरपन दोनों थे। मानवी खड़ी होकर लाइट बुझा दी और कुछ ही देर में पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अवनी थोड़ी ही देर में सो गई। मानवी ने बिस्तर पर अवनी को चादर ओढ़ाई और फिर सोने के लिए सोफे पर आ गई। वेद का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, वो लैपटॉप पर बैठे बैठे ही काम निपटा रहा था। फिर उसने सोफे पर बैठी मानवी की ओर देखा। मानवी, तुम भी आ जाओ, सो जाओ बिस्तर पर, अवनी खुश दिखेगी, उसने कहा। आवाज इशारे में थी पर ठीक ठीक आदेश भी लग रही थी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मानवी ने मन ही मन टकराहट महसूस करते हुए कहा। वो थोड़ी सी दूरी बनाए रखना चाहती थी, इतनी छोटी सी लकीर जो पिछले कई सालों से उसने अपने और वेद के बीच खींच रखी थी। वेद ने लैपटॉप बंद किया और सोफे पर उठकर उसके पास आ गया। उसका चेहरा कमरे के अंधेरे में थोड़ा सा चमक रहा था। उठो मानवी, बिस्तर पर आ जाओ, उसने फिर गंभीरता से कहा। इस बार उसकी आवाज में उस तरह की मजबूरी थी जो कमाल की खामोशी के बाद आती है, बिना बहस के, बिना विकल्प के। मानवी कुछ पल पलकें झपेकती रही। अंदर कोई हिस्सा गुस्से से फटना चाहता था, कोई हिस्सा डरकर सिकुड़ रहा था। मैंने कहा ना, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने कड़वाहट के साथ कहा। वेद ने उसकी तरफ एक लंबी ठंडी सांस भरी और उसके गाल पर हाथ रखा। फिर अचानक, जल्दी और तेज, बिना चेतावनी के, उसने मानवी का चेहरा पकड़ा और उसे चूमने लगा। किस इतना जोरदार था कि मानवी के सांसों के लुकने की अपनी सी आवाज भीतर गूंजी। वो चूमना लंबा रहा, इतना लंबा कि मानवी का दिल सूना पड़ गया। उसने छातियों के भीतर एक अनकही चक्की सी महसूस की। उसने खुद को छीनने की कोशिश की, लेकिन वेद के हाथ ठहर गए। उसकी पकड़, उसके इशारे में सीमा भी थी और धमक भी। किसके बाद वेद ने धीरे से वापस हटते हुए अपना चेहरा पूंछा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, उसने कानाफूसी में कहा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी हद में रहूंगा, पर बिस्तर पर आ जाओ, और जो लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं उन्हें मनवाना जानता हूँ। उसकी आवाज में उभरी हुई ठंडक मानवी की नसों में कड़क गई। मानवी की आंखें भर आईं। गुस्सा और शर्म का एक अजीब सा मिश्रण उसके चेहरे पर छलका। उसकी उंगलियां कड़ी होठों पर दब गईं और अंदर ही अंदर एक चीख फूटी जो उसने निगल ली। वो उठी धीमी स्थिर चाल से और बिस्तर की ओर चली। मन कहीं और, आत्मा कहीं और, पर कदम चल रहे थे क्योंकि उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। वो बिस्तर पर बैठी और बोली, आवाज कांपते हुए, ठीक है, मैं आ जाती हूँ। वेद ने उसके चेहरे को एक बार देखा, नैनों में मिला हुआ दर्द, गुस्सा, हिचक, सब कुछ पढ़ लिया। उसकी गहरी आवाज में फिर चेतावनी थी, पर हल्की कसक भी। ठीक है, मानवी ने चुपचाप बोला, तुम मुझे डराते हो, उसकी आवाज कमजोर थी पर साफ। वेद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के लिए कमरे में केवल रात की सूनी चुप्पी रही, एक ऐसी चुप्पी जिसमें दोनों ही अपने अपने भय और उम्मीदें रखे हुए थे। मानवी ने बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद कर ली, पर नींद उसे नहीं आई। उसके दिल में सवाल गूंज रहे थे, क्या उसने सही किया? क्या उसकी बेटी की भलाई के नाम पर वो खुद को हर बार इतना छोटा करती रहेगी? और अगर ये सब जारी रहा तो एक माँ के नाते वो किन किन मुश्किलों का सामना करेगी? वेद ने अपने लैपटॉप की तरफ आंख उठाई, फिर उसे बंद कर दिया। उसने बिस्तर के किनारे आकर चुपके से बैठा, हालांकि दूरी बनाए रखकर। उसकी आंखों में कुछ नरमी भी झिलमिला रही थी, पर अगले ही पल वो सख्त और अनजान सी मुद्रा में बदल गई। उसने धीरे से कहा, सो जाओ। मानवी ने थोड़ा सा मुड़कर उसका चेहरा देखा। वो देखना चाहती थी कि भीतर कौन सा इंसान है, प्यार से भरा या बस हुक्मरान। पर वेद का चेहरा फिर वही रहस्य बनकर रह गया। वो सामने था पर मानवी से कहीं दूर। कमरे की हल्की अंधेरा उनमें सब कुछ ठकने लगा।
मानवी ने अपने हाथ से अवनी की छोटी सी हथेली को पकड़कर कस लिया और खुद से कहा, आज के बाद भी उसके फैसले उसी एक तार पर टके रहेंगे, उसकी बेटी की खुशी।
किसके बाद वेद ने धीरे से वापस हटते हुए अपना चेहरा पोंछा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, उसने कानाफूसी में कहा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी हद में रहूंगा, पर बिस्तर पर आ जाओ। और जो लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं उन्हें मनवाना जानता हूं। उसकी आवाज में उभरी हुई ठंडक मानवी की नसों में कड़क गई। मानवी की आंखें भर आईं। गुस्सा और शर्म का एक अजीब सा मिश्रण उसके चेहरे पर छलका। उसकी उंगलियां कड़ी होठों पर दब गईं और अंदर ही अंदर एक चीख फूटी जो उसने निगल ली।